हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। याशी का जन्मदिन होने की वजह से ध्रुव लंदन गया था। फ्लाइट में देरी होने की वजह से वो समय पर नहीं पहुंच पाया, तो याशी का मूड खराब था। उसने ध्रुव के बिना केक तक नहीं काटा था और उसके सोने का समय हो रहा था। ध्रुव के ना आने पर याशी बहुत मायूस हो गई। वो युग और कृषा के सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए बहाना बनाकर अपने कमरे में जाने लगी। युग उसके दिल की हालत समझ सकता था। इस वक्त उसे ध्रुव पर गुस्सा आ रहा था। वहीं कृषा को डर लगने लगा कि जन्मदिन के दिन याशी का दिल दुखाने पर न जाने युग ध्रुव पर कितना गुस्सा होगा। कृषा ने युग को समझाने के लिए उसका हाथ पकड़ा। वो कुछ कहता उसे पहले युग ने सर्द आवाज में कहा, फिलहाल कुछ भी मत कहो कृष, तुम्हारी बातें मेरा गुस्सा और बढ़ाएंगी। वो जानता है कि फ्लाइट की वजह से प्रॉब्लम हो सकती थी, तो वो पहले क्यों नहीं आ सकता था? एक दिन पहले पहुंच सकता था, लेकिन उसे फ्लाइट से ही आना होता है, जबकि हमारे पास प्राइवेट जेट अवेलेबल है। मैं यश की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, जो कि तुम्हारे लाडले बेटे की वजह से आए हैं। युग और कृषा अपनी बातों में लगे थे, तो वहीं याशी लिफ्ट के पास पहुंची ही थी कि तभी ध्रुव दौड़ते हुए आया। वो हाँफ रहा था। उसने अपने बैग साइड में पटका और दूर से ही तेज आवाज में कहा, अपने बर्थडे बिना केक कट किए कौन सोता है एंजल? ध्रुव की बात सुनकर याशी जल्दी से उसकी तरफ पलटी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और वो दौड़ते हुए ध्रुव की तरफ जा रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर युग का गुस्सा कुछ शांत हुआ। बच गया ये लड़का, वरना सच में इसे युग के गुस्से का सामना करना पड़ता, कृषा ने धीरे से बड़बड़ाकर कहा। युग ने उसकी बात सुन ली थी। वो सिर हिलाकर बोला, गुस्से का सामना तो इसे अब भी करना होगा, बस ये समझो कि आज यश की वजह से फिलहाल मैं इसे कुछ नहीं कहने वाला। कृषा ने युग को शांत रहने को कहा और फिर याशी और ध्रुव की तरफ देखने को कहा। याशी की हाइट मैच करने के लिए ध्रुव उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था, जबकि वो उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। वेरी बैड भाई, आपने देर कर दी, कहीं मेरा बर्थडे बिना सेलिब्रेशन के निकल गया होता तो, याशी ने शिकायत लगाते हुए मासूम आवाज में कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरी एंजल का जन्मदिन हो और उसका भाई ना आए। हाँ, आने में थोड़ी देर हो सकती है, वैसे डैड थे ना यहाँ पर, फिर तुमने केक कट क्यों नहीं किया? ध्रुव ने उससे अलग होकर पूछा। दौड़ने की वजह से याशी के बाल थोड़े बिखर गए थे, तो ध्रुव उन्हें काफी प्यार से सही कर रहा था। याशी ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन मुझे अपनी पूरी फैमिली साथ में चाहिए। सॉरी एंजल, मेरी वजह से तुम्हारा मूड ऑफ हो गया, आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा, ध्रुव ने अपने दोनों कान पकड़कर कहा, तो याशी हंसने लगी। ध्रुव को सॉरी बोलते देखकर युग और कृषा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो अच्छे से जानते थे कि ध्रुव किसी को सॉरी नहीं बोलता है। आज यहाँ तारा होती तो वो तो हैरानी से पागल हो जाती। जो इंसान किसी के सामने अपनी गलती होने पर भी सॉरी नहीं बोलता था, वो आज एक छोटी सी देर आने की गलती की वजह से याशी के सामने घुटनों के बल दोनों कान पकड़कर खड़ा था। चलो माफ किया, याशी ने उसके गाल पर किस करके कहा। ध्रुव ने याशी को गोद में उठाया और उसे केक के पास लेकर आया। उसने युग की तरफ घूर कर देखा। ध्रुव ने सफाई देते हुए कहा, अब फ्लाइट डिले हो गई, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, तुम्हारी कभी कोई गलती नहीं होती है, तभी तुम सॉरी नहीं बोलते। थोड़ी देर पहले पता नहीं हम सब कौन सा सपना देख रहे थे, जो तुम यश के सामने कान पकड़कर खड़े थे, युग ने आईज रोल करके कहा। इससे पहले कि उन दोनों के बीच कोई बहस होती, कृषा ने उन्हें शांत करते हुए कहा, अच्छा ठीक है ना, याशी का बर्थडे रुइन नहीं करते हैं, चलो बेटा केक कट करो। याशी ने उसकी बात पर हामी भरी और केक काटने लगी। वो कन्फ्यूज हो गई थी कि सबसे पहले किसको खिलाए, तीनों ही उसके लिए इक्वली मायने रखते थे। याशी के मासूम चेहरे पर उलझन देखकर उन तीनों को हंसी आने लगी थी। युग ने उसका कन्फ्यूजन दूर करते हुए कहा, ऐसा करो बेटा, पहले खुद ही खा लो। याशी ने युग के कहने पर खुद ही केक खा लिया। वो अपने बर्थडे को लेकर बहुत एक्साइटेड रहती थी, जबकि ध्रुव बिल्कुल युग की तरह था, जिसे बर्थडे सेलिब्रेट तक करना बिल्कुल पसंद नहीं था। केक कट होने के बाद वो सब साथ में डाइनिंग टेबल पर थे। ध्रुव याशी को गोद में लेकर बैठा था और उसे अपने हाथों से खिला रहा था। वो याशी को बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह ख्याल रख रहा था। ध्रुव को युग से बहुत सी बातें करनी थी, पर फिलहाल वो शांत था। ध्रुव ने याशी से कहा, अच्छा बताओ एंजल, स्कूल में किसी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया?
नहीं, मैंने सबको बोल दिया, मेरे डैड बहुत बड़े लॉयर हैं और मेरे भाई भी लॉयर बनेंगे, अगर किसी ने मुझे बुली किया तो मैं उन पर लीगल एक्शन लूंगी, याशी मासूमियत से बोली। एक पल के लिए वहां शांति छा गई। ध्रुव ने भौहें उठाकर कहा, बिल्कुल, उन्हें बोलना तुम्हारे डैड और भाई को उन्हें सबक सिखाने के दूसरे तरीके भी आते हैं।
कौन से तरीके? याशी ने कन्फ्यूजन से पूछा। ध्रुव आगे कुछ बोलता उससे पहले कृषा बीच में बोली, याशी बस करो, तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है, थोड़ी देर पहले तो तुम्हें बहुत नींद आ रही थी।
मॉम आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, याशी ने मुंह फुलाकर कहा।
रियली?
बेटा अभी तुमने अपने डैड और भाई को ठीक से पहचाना नहीं है, फिर पता चलता स्ट्रिक्ट होना क्या होता है, कृषा बोली। युग को ध्रुव से बात करनी थी तो वो याशी को गोद में उठाकर बोली, चलो यश, इट्स टाइम टू स्लीप। लेकिन मुझे भाई के साथ सोना है, याशी ने जिद करते हुए कहा। बहुत जिद्दी हो गई हो तुम याशी, चलो आओ मेरे पास, कृषा युग से याशी को लेने लगी तो ध्रुव बीच में आ गया। ध्रुव ने याशी को गोद में लेकर कहा, आप दोनों को डांटना है तो मुझे डांट सकते हो, लेकिन एंजल को नहीं, मैं इसे सुलाकर मिलता हूँ। कृष, आप भी सो जाइए, मुझे डैड से बात करनी है। इतना कहकर ध्रुव याशी को गोद में उठाकर अपने रूम में लेकर गया। उसने खुद चेंज करके याशी को चेंज करवाया। याशी ध्रुव के सीने पर सिर रखकर लेटी थी। उसने मासूमियत से कहा, भाई मुझे आप सबकी बहुत याद आती है, मुझे अकेले नहीं रहना। याशी को उनसे दूर रहना पसंद नहीं था, ये बात वो सिर्फ ध्रुव के सामने कहती थी, वरना वैसे तो वो ध्रुव की तरह युग की बात बिना किसी सवाल के मानती थी। एंजल, डैड ने तुम्हें स्ट्रांग करने के लिए डिसीजन लिया है, आप मेरी ब्रेव सिस्टर हो तो गुड गर्ल बनकर डैड और क्रिश की सारी बातें माननी है, ध्रुव ने प्यार से कहा। क्रिश की क्यों, वो तो मुझसे भी चाइल्डिश बातें करती है, याशी ने आईज रोल करके कहा। हे, तुम उन्हें क्रिश मत बोलो, वरना वो मुझ पर गुस्सा होगी कि उन्हें मॉम कहने वाला कोई नहीं। चलो अब सो जाओ, ज्यादा बातें मत करो, खुद को कभी अकेले मत समझना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है एंजल, ध्रुव ने उसे प्यार से समझाया और फिर सुला दिया। याशी के सोते ही ध्रुव ने उसे आराम से बेड पर लिटाया और फिर उसके फोरहेड पर किस किया। याशी की वजह से ही ध्रुव मेहर को अपने साथ लेकर नहीं आया, उसने कुछ पल याशी के चेहरे को प्यार से देखा और फिर लाइट ऑफ करके बाहर आ गया था। कमरे के बाहर पहले ही युग हाथ बांधकर खड़ा था। उसे वहां देखते ही ध्रुव ने भौहें चढ़ाकर कहा, वेरी बैड डैड, इस तरह आपको हमारी बातें नहीं सुननी चाहिए, हमारी भी कुछ प्राइवेसी है, प्राइवेसी की बातें बाद में करना, अगर कृष ने यश के मुंह से मॉम के बजाय अपना नाम सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं है, युग ने सिर हिलाकर जवाब दिया और फिर वहां से बाहर की तरफ जाने लगा। ध्रुव उसके पीछे पीछे आ रहा था। कुछ ही देर में वो दोनों विला के गार्डन एरिया में थे। बाहर आते ही युग ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसके जैकेट की स्लीव्स ऊपर करके उसका घाव देखने लगा जो ठीक हो चुका था।
अपने दुश्मनों को इतना करीब मत आने दो बेबी डेविल कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए, युग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। युग को ध्रुव की इतनी ही चिंता थी, बस वो जताता नहीं था। ध्रुव ने फिर से अपने जैकेट की स्लीव्स को सही करके कहा, कई बार कुछ काम करने में चोट लग सकती है। तारा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, अचानक युग ने पूछा। तो आप मुझसे तारा के बारे में बात करना चाहते थे, डैड मुझे उस पर यकीन हो गया है, शी इज इनोसेंट, और आपको जानकर हैरानी होगी कि हम दोनों अब फ्रेंड्स बन गए हैं, ध्रुव ने हल्का मुस्कुराकर बताया। अच्छी बात है कि तुम किसी को दोस्त बना रहे हो, लेकिन उसे इतना करीब भी मत कर लेना कि दोस्ती प्यार में बदल जाए, युग ने उसे घूरते हुए कहा। वो ध्रुव के चेहरे के भावों को पढ़ना चाहता था। तारा का जिक्र आने पर ध्रुव की आंखों में तारा का चेहरा आ गया, उसके चेहरे के भाव नरम पड़ने लगे। युग ने गर्दन टेढ़ी करके ध्रुव की आंखों में देखा। ध्रुव बिल्कुल शांत था, लेकिन युग के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। ध्रुव ने युग के फेस पर स्माइल देखकर भौंहें चढ़ाकर पूछा, वॉट? अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें तारा से प्यार हो तो दूर रहो उससे, युग ने सिर हिलाकर कहा। ऐसा कुछ नहीं है, ध्रुव हड़बड़ाकर बोला। खुद को धोखा दे रहे हो या मुझे धोखा देना चाहते हो बेबी डेविल? तुम्हारी आंखों में किसी लड़की के लिए जज्बात नजर आ रहे हैं, मेहर रायचंद के साथ तुम सगाई कर चुके हो, ऐसे में किसी और से प्यार करोगे तो दिल और दिमाग के बीच उलझ कर रह जाओगे। कभी ऐसी हालत मेरी भी हुई थी जब मुझे सारा और क्रिश के बीच से किसी एक को चुनना था, युग ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन आपने भी अपने दिल की सुनी ना डैड, और आपने क्रिश को चुना, ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा। बिल्कुल नहीं, मैंने फिर उसको जाने दिया था क्योंकि मैं जानता था कि वो इतनी मासूम है कि हमारी दुनिया में उसका कोई काम नहीं है। फिर मुझे उसकी सच्चाई पता चली कि वो असली माफिया प्रिंसेस है। शुक्र मनाओ मुझे उससे प्यार था और मैंने उससे शादी कर ली, वरना तुम्हारा इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं होता, युग ने ईविल स्माइल करते हुए बेपरवाही से कहा। ध्रुव की बातों ने युग के दिल और दिमाग में हलचल पैदा कर दी थी। वो भले ही युग से छुपा रहा हो, लेकिन सच वो भी जानता था, तारा अगर उसके करीब आती तो उसके दिल में हलचल सी मच जाती थी। ध्रुव ने गहरी सांस लेकर कहा, थोड़े दिनों की बात है डैड, मैंने वीर को कहा है कि वो उसके भाई बहनों को ढूंढ ले, उसके बाद तारा वहां से चली जाएगी। अच्छी बात है बेबी डेविल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी किस्मत भी मेरी तरह निकले, यू नो व्हाट आई मीन, युग ने इशारों में काफी कुछ कहा था, लेकिन ध्रुव उस वक्त समझ नहीं पाया। समझता भी कैसे, उसका दिल और दिमाग तो तारा में उलझा हुआ था। उसका ध्यान हटाने के लिए युग ने बात बदलते हुए कहा, और कुछ हुआ था जो बताने की जरूरत है? कुछ खास नहीं, माफिया की दुनिया में सब कुछ बिल्कुल शांत है। थोड़े दिन पहले अलीशा एक एग्जीबिशन में गई थी जहां हमारे दुश्मन गुजराल फैमिली का एक लड़का उसके साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ध्रुव ने सिर हिलाकर कहा। जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, अलीशा ठीक है? युग ने पूछा। हाँ ठीक है, तारा ने काफी हेल्प की थी, वरना अलीशा ने मुझे उसे लड़के को मारते हुए देख लिया था, ध्रुव ने जवाब दिया। इसका मतलब तुम्हारा गुस्सा भी तारा ने ही शांत किया होगा, युग ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर ध्रुव ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया था।
उनकी बात पूरी हो चुकी थी तो वो अपने कमरे में जाने लगा। कुछ कदम आगे बढ़ाने के बाद युग ने तेज आवाज में कहा, कभी कभी अपने दिल की सुन लेनी चाहिए बेबी डेविल, ये गलत नहीं कहता है, खासकर जब मामला प्यार का हो। रही बात तीन पड़ाव हासिल करने की, तो उसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गया डैड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ध्रुव ने अपनी सफाई में कहा। युग आगे कुछ नहीं बोला और फिर वहां से चला गया। वहीं ध्रुव अभी भी वहीं पर रुका हुआ था। बाहर ठंड होने के बावजूद वो अंदर नहीं गया। ध्रुव का मन कर रहा था कि वो तारा को कॉल करके उसके बारे में पूछे, लेकिन युग की बातों की वजह से वो तारा को कॉल नहीं कर रहा था। अब तो उसे भी डर लग रहा था कि कहीं उसे सच में तारा से पागलपन की हद तक प्यार हो गया तो वो अपने मकसद से भटक जाएगा। वहीं दूसरी तरफ तारा काफी बेचैन थी। ध्रुव को गए हुए पूरा एक दिन बीत चुका था, ध्रुव ने उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया था। एक दिन में ही तारा की ये हालत हो गई थी, जबकि ध्रुव तो वहां 15 दिन के लिए रुकने वाला था। तारा का ध्रुव के बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, तो इस बीच कबीर ने तारा से कॉन्टैक्ट करने का रास्ता निकाल लिया था। मिशन का पहला पड़ाव तारा पार कर चुकी थी, क्योंकि वो ध्रुव के पास पहुंच चुकी थी। अब देरी थी तो अगले पड़ाव की, जहां उसे ध्रुव पर वार करना था। इस बारे में बताने के लिए कबीर ने पूरी डिटेल्स लिखी और तारा से मिलने के लिए निकल गया था।